नमस्कार भारत, आज है गुरुवार 15 अक्टूबर और मैं हूं निखिल रंजन। फरीदकोट में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई में दो युवकों की मौत, आज पंजाब बंद का ऐलान। साहित्य अकादमी ने माना पुरस्कार लौटाने से घटी इज्जत, लेकिन विश्वनाथ तिवारी नहीं देंगे इस्तीफा।
व्यक्ति की स्वतंत्रता में हर लेखक विश्वास करता है, फिर साहित्य अकादमी क्यों नहीं विश्वास करेगी? साहित्य अकादमी की कुछ सीमाएं हैं।
बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया चुनाव प्रचार, 105 साल के बुजुर्ग ने बताया उत्साह में कमी का कारण।
कोई फायदा ना है सर, काहे ना हुआ कि जे आते हैं यहाँ पर तो अपना पेट भरे के लिए सर, गरीब के पेट भरे के लिए नहीं।
कैसे निवेश की पसंदीदा जगह बन रहा है भारत, खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। यरूशलम में पुलिस ने इसराइलियों को चाकू मारने की कोशिश करने वाले दो फलस्तीनियों को गोली मार दी है। यरूशलम में बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है, जिनसे निपटने के लिए इसराइल ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसराइल पर निर्दोष फलस्तीनी बच्चों को मारने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि महमूद अब्बास झूठ और उकसाने वाली बात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग में भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर थे जिनमें लिखा था, भ्रष्टाचार अपराध के बराबर है। प्रदर्शन में शामिल होने की वजह बताते हुए एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा,
We are here because of the corruption that we have seen it on TV.
हम यहाँ भ्रष्टाचार की वजह से आए हैं जो हम अपने आसपास हर दिन देखते हैं, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे देश में रोजगार में कमी हो रही है। जोहानिसबर्ग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि अमेरिका और रूसी सेनाएं सीरिया में हवाई सुरक्षा के मसले पर समझौते के नज़दीक पहुंच गई हैं। अगर ये समझौता हो जाता है तो सीरिया के आकाश में हवाई जहाज़ों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया तय की जा सकेगी। अमेरिका और रूस को उम्मीद है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सीरिया में दुर्घटनावश होने वाले टकरावों को रोक सकेगा। दोनों देश सीरिया में चरमपंथियों के ठिकाने पर हवाई हमले कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफ्रीकी देश कैमरून में बोको हराम के इस्लामी चरमपंथियों से लड़ने के लिए अमरीकी सैनिकों की तैनाती की घोषणा की है। लगभग 300 सैनिकों का ये दस्ता चरमपंथियों की हवाई निगरानी के अलावा इलाके में जारी अभियानों में मदद करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून और चाड इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के निशाने पर हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि ज़रूरत पूरी होने तक अमरीकी सैनिक कैमरून में तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। मोदी ने कहा कि बोस की फाइलों को सार्वजनिक करने का काम अगले साल उनके जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा। कल सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मांग की थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में रखी इस तरह की 100 से अधिक फाइलों को बिना किसी देरी के सार्वजनिक किया जाए, ताकि नेताजी की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ सके। एक अध्ययन से पता चला है कि इबोला का वायरस पुरुष मरीजों के शरीर में ठीक होने के बाद भी लगभग 9 महीने तक मौजूद रह सकता है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। खबर पंजाब से है। पंजाब के फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथ फाड़ने की घटना के बाद हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच राज्य में सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। अब से बच कुछ ही मिनट पहले मैंने अमृतसर में स्थानीय पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन से बात कर इस बारे में ताज़ा जानकारी ली।
फरीदकोट के एक कस्बा है, वहाँ पे कोटकपूरा के पास एक गाँव है बरगाड़ी। गांव के अंदर 3 दिन पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी हो गया था। उसके बाद के जो अंग हैं, जिसको पेजेस जिसको बोलते हैं, वो उनको जलाकर फाड़कर वहां गलियों में फेंक दिया। उसको लेके वहां के जो सिख संगत थी, कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, उन्होंने धरने लगाए और पुलिस से डिमांड की कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको ढूंढकर उनकी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। लेकिन पुलिस तब तक कुछ कर नहीं पाई, या अभी वो जो कल्प्रिट थे वो पकड़े नहीं गए थे, तो उसको लेके कुछ लोग और इकट्ठे हुए। वो गांव से जो और रिवोल्ट था वो बढ़ते बढ़ते कोटकपुरा शहर में आ गया, फरीदकोट शहर में आ गया। परसों जब ये थोड़ा सा और उग्र रूप ले गया था, तो जो वहां पे फरीदकोट में पुलिस ने सिख लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था, उससे और एग्रीवेट हो गया ये सारा और बढ़ गया। और कल कोटकपुरा में जब ये रास्ता बंद करके बैठे थे, पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए वहां पे पहुंची, तो अचानक से कुछ युवकों ने पुलिस का घेराव किया और विरोध करना शुरू किया, और पुलिस की गाड़ियां भी शायद तोड़ी। तो उसको लेके पुलिस ने अपने बचाव में आशु गैस छोड़े, लाठी चार्ज किया, और जब भीड़ नहीं संभली गई तो हवाई फायर किए। भगदड़ में और वो आपसी टकराव में पुलिस क्लेम करती है कि उनके 50 के करीब लोग घायल हुए हैं, और दूसरी तरफ 70 के करीब बताते हैं कि लोगों जो प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। ये कल जब हो रहा था उसी वक्त एक और गांव उसके पास है, गांव बहीबल कलां, वहां पे भीड़ को शांत करने के लिए रिपोर्टेडली पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 2 लड़के मारे गए। ये सारा कल कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस ने धारा 144 बाद में लगाई ये सब होने के बाद।
रविंदर सिंह जी, अभी क्या स्थिति है?
देखिए, तनाव तो है ही, अब इसमें तो कोई दोहराय नहीं है कि, और तनाव सिर्फ एक जगह पे नहीं है, क्योंकि ये पूरे सिख धर्म के साथ कुछ सेंटीमेंट्स के साथ ये जुड़ी हुई बातें हैं, भावनाएं आहित हुई हैं। और पंजाब के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस रिवोल्ट में साथ हो गई हैं। संत समाज ने पंजाब बंद की कॉल दी है। पहले ये पंजाब का एक एरिया मालवा है, बठिंडा और कोटकपुरा ये वाला एरिया, लेकिन अब ये पूरे पंजाब में हो गया है। आज पंजाब बंद की कॉल है, पुलिस ने धारा 144 कई जगह पे लगाई है, लेकिन अभी दिन की शुरुआत है, थोड़ी देर में पता लगेगा कि क्या कुछ होगा।
अमृतसर में स्थानीय पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन बता रहे थे कि पंजाब के फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथ फाड़ने की घटना के बाद हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं, और कुछ सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। पंजाब सरकार का कहना है कि ये घटना दुखद है और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
जो कुछ कोटकपुरा में कल हुआ या आज हुआ, ये बहुत ही दुखदायी है। जिस तरीके श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, इस इंसिडेंट को जितने भी सख्त लफ्जों में कंडम किया जाए उतना ही कम। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री साहब ने इस बात की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के जज द्वारा इसकी जांच करवाने के आदेश दिए, और साथ में एडीजीपी क्राइम की अगुवाई में एक एसआईटी भी बनाने का आज ऐलान जो शाम है पंजाब सरकार ने किया, और दोषियों को पकड़ने के लिए जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया उनके लिए 1 करोड़ की राशि का भी ऐलान आज हुआ। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सभी केस को बड़े गंभीरता से दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी दोषी जिसने कोई भी गलती की हो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा बता रहे थे कि जिन लोगों का भी हाथ होगा फरीदकोट की घटना में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इधर साहित्य अकादमी के प्रमुख डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का कहना है कि लेखकों के लगातार सम्मान लौटाने से अकादमी की गरिमा घटी है। उन्होंने बताया कि अब तक 21 लेखक सम्मान लौटा चुके हैं। हिंदी के चर्चित लेखक उदय प्रकाश साहित्य अकादमी लौटाने वाले सबसे पहले लेखक थे। उन्होंने कन्नड़ साहित्यकार और विचारक M.M. कलबुर्गी की हत्या के विरोध में सम्मान लौटाया था। उसके बाद मशहूर लेखिका और जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी लौटाने की घोषणा की। विनीत खरे ने डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी से बात कर इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए।
ये अपमान जो है अपनी ही संस्था को वो कर रहे हैं कि हम मतलब अपनी संस्था की जो गरिमा है उसको घटा रहे हैं।
तो कम से कम आप ये मान रहे हैं कि पुरस्कार लौटाने से साहित्य अकादमी की गरिमा घटी है?
जरूर, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ था, तो उस पर थोड़ा असर तो होगा। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इमरजेंस मीटिंग मैंने 23 अक्टूबर को बुलाई है,
उसमें क्या होगा?
उसमें देश भर के हर भाषा का एक एक लेखक उसमें शामिल होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में।
उसमें क्या
मीटिंग में हम सारा मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखेंगे, जैसा एग्जीक्यूटिव बोर्ड निर्देश करेगी वैसा हम करेंगे।
क्या आप मानते हैं कि जो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर अटैक्स हो रहे हैं,
जिस तरह से लेखकों पर हमले हो रहे हैं, उनके विचारों को लेकर, वो जो सोचते हैं, जो बात कहते हैं, ये आप मानते हैं?
आप एक ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जा रहे हैं कि इसका एक लंबा इतिहास है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हर लेखक विश्वास करता है, फिर साहित्य अकादमी क्यों नहीं विश्वास करेगी? साहित्य अकादमी की कुछ सीमाएं हैं, उसका अपना संविधान है।
ये पहली बार हुआ है, आप इसका जो महत्व है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। 21 लोगों ने एक साथ साहित्य,
घटनाएं बहुत हुई है लेकिन ये पहली बार हुआ है।
हाँ, तो घटनाएं कुछ तो आज के वक्त में और पुराने जमाने के वक्त में कुछ तो फर्क होगा कि एक साथ इतने सारे लेखकों ने।
लेकिन जब ये कहा जाता है कि ये पहली बार हो रहा है तो हमको ये बहुत दुख लगता है, और ये लेखकों को विचार करना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए कि पहली बार क्यों हम ऐसा कर रहे हैं।
नहीं, लेकिन आप तो उनके जो कारण है वो तो अखबार में, हर जगह मीडिया में सुनी रहे हैं।
अखबार में ये आ रहा है कि मोदी जी की चुप्पी के विरोध में, ये कारण अखबार में पहले आया, बाद में पता नहीं यह कैसे बदल करके साहित्य अकादमी की चुप्पी में बदल गया। ये हमारी समझ में नहीं आया, कहां से ये सरकार की चुप्पी को साहित्य अकादमी की चुप्पी में बदल दिया, जबकि साहित्य अकादमी सरकारी संस्था नहीं है
जी।
और साहित्य अकादमी चुप नहीं रही है।
आपको लगता है कि सरकार चुप है और सरकार को और जोर से लेखकों के ऊपर जो हमले हुए उसका जोर शोर से उस पर बोलना चाहिए था, सरकार को बात करनी चाहिए एक लेखक के तौर पर?
बिल्कुल 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 बोलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ सरकार को और तीव और मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए लेखकों के पक्ष में,
जो कि नहीं बोला गया।
हाँ, देर हो गई या नहीं के बराबर बोला गया।
और प्रधानमंत्री का बोलना कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए, अमूमन यह होता है कि बहुत बड़े लोग जो होते हैं उनका रिएक्शन भी तुरंत नहीं आता,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जाने जाते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पर है, हर जगह है। तो ऐसे ये जो आलोचना
बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं।
हाँ, ये जो आलोचना है ये कितनी सही है आपके हिसाब से?
अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये देखिए, ऐसा है ना, इन प्रश्नों के बारे में इतना कहा जा चुका है कि हमसे ना कुछ कहवाइए तो अच्छा है।
साहित्य अकादमी प्रमुख डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा कि लेखकों के लगातार सम्मान लौटाने से अकादमी की गरिमा गिरी है, और अब तक 21 लेखक ये सम्मान लौटा चुके हैं। उनसे बात कर रहे थे विनीत खरे। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ, और अब बात करते हैं बिहार के चुनाव की। अपने पूरे शबाब पर आकर बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार बुधवार की शाम थम गया। दूसरे चरण में 32 सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। अब जबकि एक दिन बचा है मतदान के लिए, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के खत्म होने से पहले बीबीसी संवाददाता सलमान राबी पहुंचे बोधगया विधानसभा क्षेत्र के हथियार गांव, जहां ना तो किसी दल का कोई पोस्टर था, ना झंडा, और ना ही लोगों में चुनाव को लेकर कोई उत्साह।
नमस्ते सर, ये हथियार गांव है
जी।
यहाँ सरपंच या मुखिया या कोई है?
सरपंच है बसाड़ी, मुखिया सेवा भी।
और प्रधान वगैरह?
प्रधान वगैरह कोई नहीं।
यह है बोध गया विधानसभा क्षेत्र का हथियार गांव, और यहाँ पर 105 साल की उम्र के बसंत चौधरी मेरे साथ हैं, जिन्होंने कई विधानसभा के चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये चुनाव जो होते रहे हैं साल दर साल, कितना मायने रखते हैं इनकी ज़िंदगी में, क्या फ़र्क पड़ा है इनकी ज़िंदगी में?
कोई फ़ायदा ना है सर, काहे ना हुआ कि जे आते हैं यहाँ पर तो अपना पेट भरे के लिए सर, गरीब के पेट भरे के लिए नहीं।
तो ये गांव ज़्यादातर जो है मुसलमानों और दलितों का है क्या?
दलित का गांव है यहाँ
जी। मुसलमान भी रहते हैं?
मुसलमान भी रहते हैं, कोई
भी है, सब जात मिलेगा, सब जात मिलेंगे। अच्छा। दो जाति आपको नहीं मिलेगा सर, राजपूत और ब्राह्मण नहीं मिलेगा।
अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव का नाम हथियार गांव कैसे पड़ गया?
ये हथियार कैसे पड़ गया सर? हथियार के मतलब है कि जो ये गढ़ है हाथी बना था,
कारी महाराज का जिम्मेदारी था,
इसीलिए हथियार
मनार था यहाँ सर।
हाथी सार था,
हाथी बनाता था टेकारी महाराज।
तो ये बताइए कि चुनाव के टाइम में मजा आ रहा है, कुछ हलचल है या एकदम सुस्त बड़ा खामोश देख रहे हैं गांव?
लाइन तो हम लोग को यहाँ मिलती है नहीं सही से सर। परवेज आलम।
अच्छा, परवेज साहब। और आप?
हम जद्दू पासवान।
जद्दू पासवान जी। और आप?
हमारा नाम जद्दू चौधरी है।
जद्दू चौधरी, दो जद्दू हैं आप।
एक नंबर लाइन ये है, दो नंबर लाइन से खेती होती है, उसमें बिजली नहीं मिलती है। क्या सब धान उधर देखिए ना सर, जाके मर रहा है सब धान, सब धान मर रहा है। दो नंबर लाइन में एकदम लाइन नहीं मिलती है, घर में लाइन जलेगा घर में आदमी काची करेगा, बोलिए अनाज घर में उपजता है कि खेत में उपजता है। नेता लोग आते हैं अपना घूम के चले जाते हैं।
जब नेता आता है कि कब होगा बताओ, क्यों नहीं किया? जो विधायक कौन है सिटिंग विधायक यहाँ पे?
हाँ, सामदेव, सामदेव पास।
किस पार्टी के हैं?
बीजेपी के।
उन्होंने कोई काम नहीं किया तो पूछा नहीं आपने कि भाई आपने क्या किया?
हम लोग कोची पूछेंगे।
जीतने के बाद फिर नजर आए न बौद्ध गया टाउन में, नजर आए न देहात में, नजर आए कहाँ रहते थे पटना, क्या हो रहा है ना हो रहा है, क्या ना मिल रहा है, कुछ नहीं देखने को लिए विधायक आते हैं थोड़ी।
चलिए, गांव की जिंदगी बड़ी अच्छी होती, बड़ी शांत।
जी हाँ, बड़ा शांति आना है सर। बिजली कटी हुई है, बिजली रहती ना सर, यहाँ ना बैठे रहते मशीन पर।
क्या मशीन? वो जो खेत वाली?
हाँ, खेत वाली, पानी जो देता है ना सर, वही वाला।
तो कितनी देर आती है बिजली?
बिजली मुश्किल से 4-5 घंटा आती है। वो कभी रात में दिया तो कभी दिन में नहीं, दिन में दिया तो रात में नहीं।
उत्साह नहीं दिख रहा है मुझे चुनाव में आप लोगों का?
जी ना, नहीं लग रहा है। बीपीएल में नाम नहीं जुट रहा है।
नहीं, चुनाव में भी उत्साह नहीं दिख रहा आप लोगों के अंदर?
नहीं, कुछ नहीं उठा दिखा पड़ता है।
नहीं, आप लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है?
नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है।
यहाँ पे रैली वैली हुई आसपास में तो गए थे आप लोग कि नहीं गए थे?
हमने पेट नहीं गए,
हम लोग कहीं नहीं जाता है रैली में।
किसी पार्टी का झंडा उंडा भी नजर नहीं आ रहा है?
नहीं, कोई के नहीं है सर, कोई का झंडा नहीं आता
है इस गाँव में। दूर दूर तक ना तो कोई झंडा है, ना कोई पोस्टर है, और ना ही कैंपेनिंग की गाड़ियां ही घूम रही हैं। सलमान रावी, BBC, हथियार गांव, बोध गया।
और आइए जरा देख लेते हैं कि आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
पंजाब के फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान और उसके बाद हिंसक झड़प के विरोध में दमदमी टकसाल और अन्य सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। पंजाब के प्रमुख शहरों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों की आज एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से गठबंधन तोड़ने पर विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सचिवालय भर्ती घोटाले के संबंध में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आज भोपाल पुलिस के समक्ष पेश हो सकते हैं। विधानसभा सचिवालय में भर्तियों में कथित घोटाला वर्ष 1993 से वर्ष 2003 के दौरान तब हुआ था जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की मियाद आज खत्म हो रही है। तीस्ता और उनके पति पर दंगा पीड़ितों के लिए जुटाई धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप के लिए संबंधित कंपनियों से मुआवजा दिलाने संबंधी प्रस्ताव आज पेश कर सकता है। मोबाइल फोन ऑपरेटर ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी नेता प्रचंड आज चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। प्रचंड का चीन दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और नेपाल के बीच नाकाबंदी के मुद्दे पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं का आज एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें प्रवासियों के संकट पर खास तौर पर चर्चा होगी। यूरोप के कई देश सीरिया और तुर्की से आने वाले प्रवासियों से जूझ रहे हैं।
भारत को एक सर्वे में निवेश का सबसे आकर्षक देश बताया गया है। अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने इस सर्वे को प्रकाशित किया है जिसमें 500 से ज़्यादा वैश्विक निवेशकों से बात की गई है। जब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उनमें से 32% ने कहा कि भारत उनके लिए निवेश का पसंदीदा बाजार है और 15% ने चीन के लिए वोट किया। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की आर्थिक मामलों के जानकार परंजय गुहा ठाकुरता से और इसकी वजह के बारे में पूछा।
आज विदेशी निवेशक के लिए और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भारतवर्ष में जो एक तरह से राजनीतिक स्थिरता, क्योंकि अभी सरकार का भी 3.5 साल है और लोकसभा में बहुमत है, साथ साथ भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो फायदा हुई है करीब 1.5 साल में यह है कि कच्चे तेल का कीमत काफी गिर गया। वो गिर के जनवरी तक 2015 जनवरी तक 50 के आसपास पहुंच गए और आज भी ये 60 के आसपास है, तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत फायदा हुई है। ये सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर ये हम जैसे आयात करते हैं, इसमें 33% कच्चे तेल है और हम जितने कच्चे तेल एक साल में इस्तेमाल करते हैं लगभग 80% विदेश से आयात करते हैं। तो इसका फायदा बहुत हुआ कि आप देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति के ऊपर सरकार अंकुश लगा पाया। फिर भी थोड़ा बहुत, हाँ आज दाल का कीमत बढ़ गया, कल प्याज का बढ़ गया, मगर पूरा अगर आप थोक मूल्य सूचकांक देखेंगे भारतवर्ष के इतिहास में बहुत सालों के बाद, बहुत दशकों के बाद ये गिर रहा है। एक और बहुत बड़ा कारण है, हम देख रहे हैं कि जो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, इसका असर भारतवर्ष में इतना नहीं पड़ा। इसीलिए हम देख रहे हैं भारतवर्ष जैसे देश है, भारतवर्ष जैसे विकासशील देश है, आज विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय संस्था भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में वो आकर्षित हो रहे हैं।
तो क्या कहा जाए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट अगर आती है तो आपको लगता है कि कंपनियां भारत में निवेश करना चाहेंगी?
देखिए, विदेश से जो निवेश आ रहा है, जो निवेशक है, हाँ वो तो आया है, ये तो मानना पड़ेगा। ये मोदी जी विदेश घूम के आए इसके लिए आए हैं कि वो देख रहे हैं कि बाकी देश से आज भारतवर्ष का आर्थिक व्यवस्था बेहतर है इसीलिए आ रहे हैं, ये अलग सवाल है। क्योंकि देश के निवेशक अभी तक निवेश नहीं कर रहे, जिस जो अच्छे दिन के बाद चुनाव के पहले मोदी जी ने किया था वो अभी तक तो आया नहीं। अभी 90% निवेश जो होते भारतवर्ष के अंदर होते, भारतवर्ष के सरकार निवेश करते हैं, भारतवर्ष के अपने जो पूंजीपति है वही निवेश करते हैं। तो ठीक है, विदेश से जो निवेशक आ रहे हैं, ये इसका निवेश भी बढ़ गया, ये भी सरकार का आंकड़ा कह रहे हैं, मगर ये कितने दिन चलेंगे ये समय बताएंगे। मगर बाकी जो विश्व में जैसे आर्थिक स्थिति खराब है, इसका फायदा एक तरह से भारतवर्ष में आ रहा है, मगर ये कुछ दिन के लिए आएगा। क्योंकि अगर पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था खराब होता है तो ये तो भारतवर्ष के लिए भी अच्छा नहीं है।
और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव उनसे बात की गई थी, उनमें से 32% ने माना कि भारत जो है ये निवेश के लिए एक अच्छा बाजार है, वहीं चीन दूसरे स्थान पर ठहरता है उनके लिए। तो ये क्या एक भारत के लिए अच्छी खबर मानते हैं?
हाँ, भारत के लिए तो अच्छी खबर होंगे जरूर, क्योंकि अगर लोग यहाँ निवेश करेंगे तो हाँ ठीक है, निवेश अगर होंगे तो यहाँ पे नौकरी होने का भी संभावना है। मगर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो विदेश से निवेश आते हैं, ज्यादा नौकरी इसमें से नहीं आते, भारतवर्ष की कंपनी वो खरीद देते हैं। जब जो कहेंगे नया नया कारखाना शुरू होगा, नया नया निवेश होगा, तभी हम कह सकेंगे कि हाँ ये जो विदेश से जो पैसा आ रहा है ये हमारे देश के लिए फायदा हो रहा है।
भारत बन रहा है निवेश के आकर्षक देशों में पहले स्थान पर पहुंच रहा है, और इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे थे परंजय गुहा ठाकुरता। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यरूशलम में पुलिस ने इसराइलियों को चाकू मारने की कोशिश करने वाले 2 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी है। फिलिस्तीनियों के बढ़ते हमलों के बाद इसराइली बलों ने अपने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम के अरब इलाकों में कार्रवाई शुरू की है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यूरो का सार सुनिए संदीप सोनी से।
इसराइली पुलिस का कहना है कि एक फलस्तीनी को उस समय गोली मारी गई जब वो यरूशलम में ओल्ड सिटी में एक सुरक्षाकर्मी को चाकू मारने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह पुलिस का दावा है कि एक अन्य फलस्तीनी को पुलिस ने गोली मार दी क्योंकि यरूशलम के बस अड्डे पर उसने एक इसराइली महिला को चाकू मार दिया था। इसराइल ने फलस्तीनियों के बढ़ते हमले की वजह से पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनियों के प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने कहा कि हिंसा का ताजा दौर इसराइली दमन की प्रतिक्रिया है।
The occupation should blame itself for pushing the Palestinian people into that.
रियाद मंसूर कह रहे थे कि इसके लिए कब्जे को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसकी वजह से फलस्तीनी लोग इस हालात में पहुंच गए हैं कि वे अपने सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तनाव कम करना और हालात सुधारना इसराइल के हाथ में है। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी टेलीविजन के जरिए अपने संबोधन में कहा कि उनके लोग अपनी रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। महमूद अब्बास कह रहे थे कि हम अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे जो हमारी आत्मरक्षा पर आधारित है, और हम इसके लिए अहिंसक प्रतिरोध के साथ कानूनी और राजनयिक रास्ते अपनाएंगे। वहीं भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सम्मान करते हुए इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली संसद में कहा,
इसराइल रोचा शलोम
प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे थे कि इसराइल शांति चाहता है और इसके लिए फलस्तीनी पड़ोसियों के साथ बिना शर्त शांति वार्ता दोबारा फौरन शुरू करना चाहता है। बातचीत मुश्किल होगी क्योंकि शांति हासिल करने के लिए आतंक को रोका जाना चाहिए और जमीनी सुरक्षा उपाय नजर आना चाहिए। इस बीच अमेरिका ने इसराइल और फलस्तीनी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अक्टूबर महीने की शुरुआत से अब तक फलस्तीनियों के हमले में 7 इसराइली मारे जा चुके हैं। इस दौरान कम से कम 30 फलस्तीनी भी मारे गए हैं, जिसमें कथित हमलावर और 7 बच्चे शामिल हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। और अब अखबारों पर नजर डाल लेते हैं। संदीप सोनी स्टूडियो में आ चुके हैं।
निखिल, आज दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दादरी हत्याकांड पर बयान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा से जुड़ी हुई खबरें छपी हुई हैं। जनसत्ता ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने दादरी हत्याकांड और गुलाम अली के कार्यक्रम के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, चुप्पी तोड़ी तो बरपा हंगामा। दैनिक भास्कर की भी पहली खबर में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से मिले मोदी, केंद्र नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगा, अगले साल 23 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को अपनी सुर्खी बना के लिखा है, दादरी मामला दुखद पर केंद्र का क्या रोल। अमर उजाला लिखता है कि घटना के 16 दिन के बाद मोदी ने मौन तोड़ा। हिंदुस्तान देखें तो यहाँ पहली खबर भी नेताजी से जुड़ी हुई है। इसी अखबार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का बयान छपा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी विधायक संगीत सोम का दादरी के बिसाहड़ा गांव जाना गलत था। इसके अलावा पंजाब की खबर भी अधिकतर अखबारों में है। जनसत्ता ने लिखा है, सिखों और पुलिस के बीच भिड़ंत में 2 की मौत, 82 जख्मी।
बहुत शुक्रिया संदीप सोनी इन अखबारों की समीक्षा के लिए। और इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में धोनी की कप्तानी पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका से दूसरा वनडे 22 रनों से जीत लिया। इस जीत के बारे में तमाम पहलुओं पर बात की अयाज मेमन से हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने। आप भी सुनिए ये बातचीत।
बहुत बड़ी जीत है, मुझे लग रहा है कि ये टर्न अराउंड परफॉर्मेंस हो सकती है, ना सिर्फ इस वनडे सीरीज में लेकिन शायद इस साउथ अफ्रीका के दौरे पर, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने T20 खेला था और पहली मैच जीती थी, ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी सीरीज वनडे भी और शायद टेस्ट मैचेस भी बुरी तरह हारेंगे, लेकिन जिस तरह से कामयाबी हासिल की है इंडिया ने, मुझे लगता है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस रहा। और खास करके महेंद्र सिंह धोनी का, ये टेस्ट मैचेस में नहीं खेलेंगे लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वनडे सीरीज में ऐसा रहा तो भारत की टीम टेस्ट मैचेस में भी अपना हौसला बुलंद लेकर उतरेगी।
और आपको लगता है कि खुद धोनी के लिए ये मैच बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा उनके करियर के लिहाज से भी, क्योंकि जिस तरह से अमित मिश्रा नहीं खेल रहे थे, आलोचना हो सकती थी अगर भारत हार जाता, और अगर उन्होंने अच्छी पारी नहीं खेली होती तो और भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते।
बेशक, क्योंकि बहुत दबाव में थे, ना सिर्फ खुद के परफॉर्म के लिए लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे उन्होंने लिए, जैसे अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे भेजा है, विराट कोहली को 4 नंबर पे ले आया नीचे, जैसे आपने कहा अमित मिश्रा जो इनफॉर्म गेंदबाज है, लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, उन्हें बिठाया गया, अक्षर पटेल को लाया गया। अगर दोनों ही ये बैकफायर हो जाते, रहाणे अगर रन नहीं बनाते फिर से और अक्षर पटेल विकेट नहीं लेते, तो फिर मुझे लगता है आलोचना के साथ साथ शायद उनकी कैप्टनसी भी खतरे में थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, तो वही हुआ है धोनी के साथ।
और दक्षिण अफ्रीकी टीम को क्या हुआ, क्योंकि एक समय तो उसके 134 रन बन चुके थे और 3 विकेट ही गिरे थे।
देखिए, कभी ऐसा लगता है कि जीत बहुत आसान है तो कुछ बैट्समैन जो है वो थोड़ा कैजुअली खेलते हैं और फिर अचानक आप देखेंगे 2 या 3 विकेट गिर जाती है और फिर दबाव इतना बढ़ जाता है कि आने वाले जो बल्लेबाज है वो कोप नहीं कर पाते हैं। तो
भारत को मिली जीत विश्लेषण कर रहे थे क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पंजाब के फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथ फाड़ने की घटना के बाद हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के विरोध में सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। यरूशलम में पुलिस ने इसराइलियों को चाकू मारने की कोशिश करने वाले 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग में भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि अमेरिकी और रूसी सेनाएं सीरिया में हवाई सुरक्षा के मसले पर समझौते के नज़दीक पहुंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफ्रीकी देश कैमरून में बोको हराम के इस्लामी चरमपंथियों से लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की घोषणा की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में। आज स्टूडियो से संभाला देवाशीष कुमार ने। संदीप सोनी और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।